अगले दिन सुबह जल्दी ही प्रतीक ने अपनी टीम को इंटरव्यू लेने के लिए निकोला भेज दिया। रास्ता लंबा था, इसलिए सब सुबह जल्दी ही निकल गए और शाम के 6 बजे तक वहां पहुंच चुके थे। राघवेंद्र के पूरा परिवार सहित उसके आदमी इस इंटरव्यू को लेकर खासे उत्साहित थे। इंटरव्यू पर लेट ना हो, इसलिए उन्होंने बाकी की तैयारियां खुद से ही कर ली थी। बची कुची थोड़ी बहुत तैयारियां टीम कर रही थी। राघवेंद्र और लल्लन दूर से उन्हें काम करते हुए देख रहे थे और साथ में कुछ बातें भी कर रहे थे। लल्लन, समझा दिए हो ना सबको कि कोई बेवजह अपना मुंह कोई नहीं खोलेगा, राघवेंद्र ने धीमी आवाज में कहा। हाँ भैया जी, समझा दिए हैं एक एक को, अगर कोई ज्यादा 3-5 करेगा तो वहीं ठोक देंगे साले को, लल्लन ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर राघवेंद्र अपना माथा ठोक कर बोला, अरे डेढ़ बुद्धि, हम कह रहे हैं कि इनके सामने कुछ नहीं करना। हम कहाँ इनके सामने कुछ करने का बोल रहे हैं, इनके जाने के बाद तो कर ही सकते हैं ना भैया जी, और हमारे होते हुए आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ किसी की औकात नहीं है जो आपके खिलाफ मुंह खोल सके, लल्लन ने जवाब दिया। लल्लन को सब कुछ समझाने के बाद राघवेंद्र प्रतीक की टीम के पास गया और उनसे शांत लहजे में पूछा, आपकी तैयारियाँ पूरी हुई नहीं क्या अब तक? बाकी सब तो हो गया है सर, लेकिन वैदेही मैम का आना बाकी है, उनके आए बिना इंटरव्यू शुरू नहीं होगा, टीम मेंबर ने जवाब दिया। जवाब देने के बाद वो वापस अपने काम में लग गया। राघवेंद्र उससे थोड़ा दूर चला गया। हाँ, अब सब कुछ लड़कियों के भरोसे छोड़ दोगे तो यही होगा ना, बैठ गई होगी मेकअप करने या किसी से बातें करने, राघवेंद्र धीरे से बड़बड़ाया। तभी मानव उसके पास आकर बोला, दादा आपके इंटरव्यू को लेकर सभी बहुत एक्साइटेड हैं, विहनी और आई तो कब से तैयार होकर बैठी है, आप यकीन नहीं करोगे, दोनों ने इतने सारे गहने पहन रखे हैं जैसे किसी फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में जा रही हो, इंटरव्यू कब तक शुरू होगा? न्यूज़ एंकर का आना बाकी है, बाकी सब कुछ हो गया है, जाओ सबको बाहर आने का बोल दो, राघवेंद्र की बात पर मानव ने हामी भरी और सबको बुलाने चला गया। इंटरव्यू की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। यशवर्धन का इंटरव्यू उसके घर के लिविंग रूम में हो रहा था, तो वहीं राघवेंद्र ने इंटरव्यू देने के लिए अपनी हवेली के आंगन को चुना। राघवेंद्र की हवेली की नक्काशी बहुत ही खूबसूरत थी, जो हवेली को रॉयल लुक दे रही थी। राघवेंद्र का पूरा परिवार आ चुका था और वैदेही के आने की ही देर थी। आई, आप मुझ पर काम में 5 मिनट भी लेट करती हैं तो आप मुझ पर चिल्ला पड़ती हैं। अब देखिए, हम पिछले 1 घंटे से उस रिपोर्टर का इंतजार कर रहे हैं, वो आए तो आप उसे भी ताने सुनाना, ताकि उसे पता चले कि समय की क्या कीमत होती है, आरती ने बड़बड़ाते हुए कहा। इंटरव्यू शाम के 7 बजे होना था, अब तो 8 बजने को आ गए हैं, आपकी रिपोर्टर आएगी भी या नहीं, मानव ने टीम के पास जाकर पूछा। अब तो राघवेंद्र को भी वैदेही पर गुस्सा आ रहा था, वो इस इंटरव्यू को कैंसिल करने के लिए खड़ा हुआ ही था कि तभी सामने से वैदेही आई। उसने हमेशा की तरह फॉर्मल ड्रेस पहन रखा था, चेहरे पर वही सख्त भाव थे, उसके साथ देव भी मौजूद था, लेकिन उसने अपना हुलिया बदलकर सिर पर पगड़ी बांध रखी थी और मुंह पर नकली दाढ़ी मूछ लगा रखी थी। वैदेही मैम, थैंक गॉड आप आ गई, एक टीम मेंबर भागते हुए उसके पास जाकर बोला। आई एम सो सॉरी, रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और ऊपर से मेरा फोन भी ऑफ हो गया था, ये तो शुक्र मनाइए इन सरदान जी का जो ये रास्ते में मिल गए और उन्होंने मुझे लिफ्ट दे दी, वैदेही ने सफाई दी। देखा, उसकी गाड़ी खराब हो गई थी इस वजह से उसे आने में देर हो गई, तुम अपने कमरे में सारे दिन बिस्तर पर आराम करती रहती हो, इस वजह से तुझे काम करने में आलस आता है और तुम जानबूझकर देरी करती हो, सुमित्रा ने आरती से कहा। ऑल सेट, वैदेही ने कैमरामैन के पास जाकर पूछा। यस मैम, बस आपका ही वेट हो रहा था, बस अब हमें आर्टिफिशियल लाइटिंग का यूज़ करना होगा, कैमरामैन ने जवाब दिया। जो बातें यशवर्धन को समझाई गई थी वही टीम मेंबर पहले ही राघवेंद्र को बता चुका था कि यदि वो किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता तो टेबल से उठाकर पानी पी सकता है, ये उस बात का इशारा होगा कि इंटरव्यू में ब्रेक लिया जाए। सब कुछ सेट हो जाने के बाद वैदेही राघवेंद्र के पास गई और कहा, आई एम सो सॉरी मिस्टर सिंह, मेरी वजह से आप सब लोगों को इंतजार करना पड़ा, बट ट्रस्ट मी, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं आप लोगों को इंतजार करवाऊँ। वैदेही के शांत लहजे ने राघवेंद्र के गुस्से को पल में पिघला दिया। मानव भी वैदेही के अपीयरेंस से काफी इंप्रेस हुआ। राघवेंद्र और वैदेही दो अलग अलग सोफे पर पास में बैठे थे। वैदेही ने इंटरव्यू की शुरुआत में परिचय देते हुए कहा, नमस्कार इंडिया, मैं वैदेही रघुवंशी आज आपके सामने एक और लाइव इंटरव्यू लेकर हाजिर हूँ, जहाँ आज हमारे साथ हमारे देश के एक और युवा और काबिल नेता मिस्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह मौजूद हैं। सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद कहना चाहूंगी जो मेरी देरी से पहुंचने के बावजूद भी उनके चेहरे पर गुस्से का कोई भाव नहीं था, वैदेही ने तंज कसा। राघवेंद्र की लाल आंखें और तीखी निगाहें देखकर ही वो समझ गई थी कि उसके देर से आने की वजह से वो कितना ज्यादा गुस्से में था। जी कोई बात नहीं वैदेही जी, माना कि आप बिजी हैं, लेकिन समय की कीमत हम सबको समझनी चाहिए, जानती है ना कि बीता हुआ समय लौटकर वापस नहीं आता, राघवेंद्र ने अपनी भारी और दमदार आवाज में जवाब दिया। ओहो आरती, ये लड़की मेरे राघवेंद्र के साथ कितनी चम रही है, मैं तो बेवजह ही तेरी बहन का रिश्ता मेरे राघव से करवाने के लिए कह रही थी, ये तो रूप गुण हर लहजे से तेरी बहन से 2 कदम आगे हैं, सुमित्रा ने धीमी आवाज में कहा। आई, आपके सपने कुछ ज्यादा ही ऊंचे नहीं हो रहे, आरती ने जवाब में बोला।
जब मेरी बहन ने राघव दादा से शादी करने के लिए हाँ नहीं कहा तो आप सोच भी कैसे सकती है कि इतनी पढ़ी लिखी और फेमस न्यूज एंकर राघव दादा से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। जब भी बोलेगी तब जहर ही उगलेगी। इससे अच्छा है कि तू चुप करके ही बैठ और मुझे मेरे राघव को देखने दे। सुमित्रा ने उसे चुप करवा दिया। राघवेंद्र जी, आप तो राजनीति में पिछले कई सालों से हैं। आपको कब ऐसा महसूस हुआ कि आपको जनता की सेवा करने के लिए इस क्षेत्र में आना चाहिए? वैदेही ने अपना पहला सवाल पूछा। जी, हमारे पुरखे तो हमेशा से ही आम जनता की सेवा करते आ रहे हैं। जरूरत पड़ने पर गरीब किसानों को पैसे देना और उनके पास पैसे ना होने के बाद उनका पैसे और ब्याज माफ करना, हमने ये दरियादिली हमारे दादाजी से सीखी थी, राघवेंद्र ने चालाकी से जवाब दिया। इम्प्रेसिव। वैसे आपकी हवेली बहुत खूबसूरत है, लगता है ये भी आपके दादाजी के समय की है। जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने व्यूअर्स को स्पेशली इस हवेली की सैर करवाऊं। वैदेही ने जानबूझकर कैमरे के सामने बोला ताकि राघवेंद्र के पूरे घर में घूमकर वो वहां के हर एक कोने का पता कर सके। जी जरूर वैदेही जी, अब हमारी जनता सीधे हमारे घर तो आ नहीं सकती, तो आपके जरिए हम उन्हें हवेली के हर एक कोने की सैर करवाएंगे, राघवेंद्र ने जवाब दिया। देखा आपने, राघवेंद्र जी किसी की भी ख्वाहिश को पूरा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। सच कहूं तो हमारे देश को आप जैसे नेता की जरूरत है जो बिना मांगे ही अपनी जनता की बात सुने। बस जनता की ही कृपा है, राघवेंद्र ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा। राघवेंद्र जी से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप चाहें तो अपने सवाल हमें मैसेज या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का भी जवाब दिया जा सके। वैदेही ने जल्दी ही ब्रेक अनाउंस कर दिया। वो राघवेंद्र से बहुत नरमी से बातें कर रही थी ताकि उसके बर्ताव पर किसी को भी शक न हो। उसका बर्ताव राघवेंद्र सहित उसके पूरे परिवार का दिल जीत रहा था।
ब्रेक के बीच राघवेंद्र ने वैदेही से कहा, टीवी पर आपको देखते हैं तो लगता है कि आप कितनी स्ट्रिक्ट होंगी, लेकिन आज आपसे मिलकर कुछ और ही देखने को मिल रहा है। क्या करें सर, कैमरे के सामने थोड़ी बहुत तो एक्टिंग करनी पड़ती है। बुरा मत मानिएगा, अब मैं आपसे थोड़ी स्ट्रिक्ट क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, तभी लोग आपको ज्यादा से ज्यादा देखेंगे। आप मैनेज कर लेंगे ना सर? वैदेही ने प्यार से पूछा। हाँ, हमने आपका पिछला इंटरव्यू देखा था, हम तभी समझ गए थे कि कुछ तीखे सवाल भी जरूरी होते हैं। अब खाने में भी वही अच्छा लगता है जो तीखे के तड़के के साथ हो, राघवेंद्र ने तुरंत उसकी बात पर हाँ कह दी। यशवर्धन अनंत देसाई के साथ बैठकर राघवेंद्र का इंटरव्यू देख रहा था। जितना लाइमलाइट यशवर्धन के इंटरव्यू को मिला था, उससे कहीं ज्यादा राघवेंद्र के इंटरव्यू को मिल रहा था। कहना पड़ेगा, वैदेही जी काफी अच्छे से शीशे में उतार रही हैं राघवेंद्र को, अनंत देसाई ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। हाँ, ये जरूरी भी है। जानते हो ना कि राघवेंद्र के मामले में टेढ़ी उंगली से घी निकालने के बजाय घी को पिघलाकर निकालने में ज्यादा भलाई है। अच्छा हुआ वैदेही जी ने इंटरव्यू से पहले हमसे बात कर ली थी और हमने उन्हें सब कुछ बता दिया था, यशवर्धन ने कहा। हाँ, और इसी बहाने आपको वैदेही जी से बात करने का मौका मिल गया। देसाई की बात सुनकर यशवर्धन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसकी मुस्कुराहट देखकर देसाई ने कहा, आपको उनके साथ रहना अच्छा लगता है ना? अब आपसे कुछ छुपा थोड़ी ना है देसाई जी, हम भले ही किसी और मकसद से उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन कब इन चंद मुलाकातों ने दिल में उनके लिए जगह बना ली पता ही नहीं चला, यशवर्धन ने शायराना अंदाज में कहा। जैसे ही इंटरव्यू का ब्रेक खत्म हुआ, वैदेही और राघवेंद्र की स्क्रीन पर आते ही उन दोनों ने अपनी बातें बंद कर दी। उन दोनों की नज़रें फिर से स्क्रीन पर गड़ी हुई थीं। स्वागत है आपका एक बार फिर से। अब मैं आपका ज्यादा टाइम को ना लेते हुए राघवेंद्र जी के साथ इंटरव्यू को आगे बढ़ाना चाहूंगी। हाँ तो राघवेंद्र जी, आपके पॉलिटिकल करियर की बात करें तो ये आपके कॉलेज में ही शुरू हो गया था, वैदेही ने अपना अगला सवाल पूछा। हाँ, हम अपने समय में कॉलेज के स्टूडेंट लीग के अध्यक्ष थे, और सच कहें तो आज भी हमारी बात को वहां उतनी ही तवज्जो दी जाती है जितनी की पहले दी जाती थी, राघवेंद्र ने जवाब दिया। हाँ, आपकी पॉपुलैरिटी ही कुछ ऐसी है, लेकिन मैंने सुना है कि आप पहले वो इलेक्शन हार गए थे, लेकिन कुछ दिन बाद आपके सामने जो खड़ा हुआ था और जिसने इलेक्शन जीता था उसकी मौत हो जाने की वजह से आपको अध्यक्ष घोषित किया गया था, वैदेही के सवाल ने सबको चौंका दिया था। इस बात के बारे में अब तक किसी को खबर तक नहीं थी, राघवेंद्र ने कभी इसके बारे में किसी को नहीं बताया था, और उसके कॉलेज से भी सब डेटा हटवा दिया गया था, वैदेही के सवाल ने राघवेंद्र को निरुत्तर कर दिया था। वो चुपचाप बैठा था, उसे सवाल का जवाब ना देने की स्थिति में पानी पीने को कहा गया था ताकि इंटरव्यू को रोक लिया जाए, लेकिन उसने ऐसा कोई इशारा नहीं दिया। वो वैदेही की तरफ गुस्से में घूर रहा था, मानो अगले ही पल गला दबाकर उसकी जान ले लेगा।